कबीर के इस रूप को जहाँ वे एक विह्वल प्रेम रस से भीगे उससे बाहर से भीतर तक सराबोर विरह की कठिन चोट से घायल और आर्त एक संत साधक और भक्त हैं, उनके उस रूप से जहाँ वे बोझ से दीप्त भयानक रूप से आक्रामक और कठोर हैं अलग करके नहीं देखा जा सकता। कबीर अपनी अद्वितीयता के साथ वहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी, दोनों रूपों की एकात्मता कबीर की सही पहचान है। दोनों को अलग अलग करके कबीर को समझने और पहचानने का प्रयत्न करना उन्हें या तो न पहचानना है या अधूरा पहचानना है, और इस अधूरी खंडित या एकांगी पहचान पर आधारित उनके बारे में हमारे सारे निर्णय भी अधूरे खंडित और एकांगी होंगे। कबीर का व्यक्तित्व एक समग्र व्यक्तित्व है, उनकी चेतना एक अखंड चेतना है, उनके साधना, उनकी भक्ति, उनका संतत्व, उनकी डांट फटकार, उनका अखड़पन, उनका मूर्ति भंजकत्व सब उनकी इस अखंड चेतना की ही नाना अभिव्यक्तियां हैं, उसी के अलग अलग तेवर हैं। उनमें अंतर विरोध दिखाई पड़ सकता है, असंगत लग सकती है, किंतु तभी जब हम कबीर के समग्र को नजरअंदाज करते हुए टुकड़ों में पढ़ने और गुनने का प्रयास करेंगे। हम कबीर के उन अंतर विरोधों को ढकना नहीं चाहेंगे जो उनके अपने युग जीवन से संबंध रखते हैं। यह मानते और कहते हुए भी कि कबीर ने अपने समय का अतिक्रमण किया था और उसे काफी चीरते हुए क्षतिग्रस्त करते सामने आए थे, अपने अनेक समान धर्माओं को वे पीछे छोड़ते हुए अपने युग जीवन का अतिक्रमण करते हैं, फिर भी कबीर एक व्यक्तित्व थे, एक व्यक्ति थे, और युग के अपने निशान भी उन पर पड़े हैं, कहीं कुछ ज्यादा। किंतु इससे कबीर के बारे में हमारी मूलवर्ती धारणा में कोई अंतर नहीं आता। अपने समय और समाज के अंतर विरोधों को झेलने वाले, उनके बीच से रास्ता बनाने वाले, एक दुर्धर्ष योद्धा की भांति उससे टकराने वाले के अपने शरीर और अपनी चेतना में प्रतिपक्षी की कुछ खरोचे आएंगी ही, और वे कबीर के व्यक्ति और उनके विचारों पर दिखाई भी देती हैं। परंतु कबीर के द्वारा युग पर डाले गए निशान उनके अपने ऊपर पड़े निशानों से कहीं ज्यादा गहरे हैं, और कहीं यही कबीर वस्तुतः कबीर भी हैं। हम जो बात ऊपर कहना चाहते थे वह यह है कि कबीर के भक्त उनके संत या उनकी भक्ति या उनके संतत्व तथा उनकी विद्रोही छवि को एक और अखंड माना जाना चाहिए, उनमें फांक करके हमें उन्हें नहीं देखना चाहिए। इस सत्य को फांप लेने के मायने हैं कबीर को सही अर्थों तथा सही आशय के साथ समझने की दृष्टि पा लेना। समाज का प्रभु वर्ग इसी सत्य को नहीं पहचान पाया, यही कारण है कि कबीर उनकी नजरों में आज भी तिरस्कृत हैं, आज भी उपेक्षित हैं, और जब तक वर्ग, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, जाति और नस्ल की दीवारों को ढहाती हुई इंसानियत और इंसानी संस्कृति की वह छवि नहीं उभरती जिसे कबीर ने देखा था और अपने युग को निर्मम होते हुए भी दिखाना चाहा था, जब तक तमाम प्रकार के झूठे दावों को मिटाता गिराता सच्ची मानवता का वह सोता अपने समूचे वेग से नहीं फूटता जिसके लिए कबीर आजीवन फावड़ा और कुदाल लिए श्रमरत रहे, तब तक कबीर इसी प्रकार उपेक्षित रहेंगे, इसी तरह इसी प्रकार त्याज्य बने रहेंगे, इसी प्रकार बेपहचान होंगे। सच पूछा जाए तो कबीर अपने समय से बहुत आगे की हस्ती थे। समय ने अपने कुछ निशान उन पर छोड़े जरूर, पर वे समय की गिरफ्त में आ नहीं सके, उसे झाड़ते और मुंह बिराते हुए आगे निकल गए। हम कह चुके हैं कि यही कबीर का कबीरत्व है, न उन्हें उनके समय के लोग ठीक से जान सके और गुन सके, और न आज ही वे सही अर्थों में जाने और पहचाने जा रहे हैं। किंतु इतना निश्चित है कि इतिहास उसी दिशा की ओर गतिशील है जिस दिशा की ओर कबीर की उंगली थी। यह भी निश्चित है कि आगे आने वाले युग कबीर का युग होगा, क्योंकि कबीर ने जो कुछ देखा और दिखाना चाहा था वह बड़ी कठिन साधना के बाद उन्हें हासिल हुआ था, बड़े गहरे अनुभव के साथ जुड़कर सामने आया था। जिंदगी की कीचड़ में कमर तक धंस कर उन्होंने सच्चाई के कमल का साक्षात्कार किया था। दूर दूर तक छाए अंधकार में भी उनकी आँखें शताब्दियों बाद आविर्भूत होने वाले भविष्य को देख सकी थी। जिस समय सारा समाज सुख की नींद सो रहा था, मनुष्यता के उज्जवल भविष्य का यह दृष्टा जाग रहा था। सारा समाज सुख सुविधाओं को भोग रहा था, किंतु कबीर दुखों की भट्टी में सुलग रहे थे, युग की पीड़ा का साक्षात्कार करते हुए आंसू बहा रहे थे। वे ऊपर से अक्खड़ तथा फक्कड़ थे, किंतु भीतर से नितांत दुखी तथा संतप्त। अपने लिए नहीं, कोटि कोटि साधारण जनों की पीड़ा तथा व्यथा से कबीर के मर्म से निकली वाणी है, जो उनकी इन पंक्तियों में गूंजी है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वे जाग रहे थे और रो रहे थे, शेष सब खा रहे थे और सुख की नींद सो रहे थे। क्या है कबीर का यह जागना और रोना? क्या हम इसे मात्र अभिधा में ही ग्रहण कर चुप रह जाएं, या उसकी कोई दूरवर्ती तथा गहरी व्यंजना है जिससे हमें मुखातिब होने की जरूरत है? हम कह चुके हैं कि कबीर देश के सांस्कृतिक नवजागरण के अग्रदूत थे। अपने गुरु रामानंद की भांति जब जब देश शताब्दियों तक गहरी निद्रा में निमग्न रह कर जागा है, उसके जागरण की अभिव्यक्ति उसके घोर रुदन में ही हुई है। जीवन के यथार्थ अनुभव जागने पर ही होता है। सुप्तावस्था में मनुष्य स्वप्न देखता है और जागने पर उसे वास्तविकता दिखाई देती है। वास्तविकता यह दीदार जाहिर है कि सुखकर नहीं होता। सुप्तावस्था के युग अंधकार के युग के नाम से भी पुकारे गए हैं, और यह अंधकार अज्ञान का, आत्मग्रस्तता का, छल का, अविद्या का, मूढ़ता का अंधकार रहा करता है। तभी जागने पर जो कुछ सामने दिखाई देता है वह सुख नहीं पहुंचाता, भीतर तक मथ देता है। कबीर का भी यह जागना और रोना इसी प्रकार का है। वह आध्यात्मिक भी है और ठेठ सामाजिक सांस्कृतिक वास्तविकता से प्रसूत भी। कबीर ने अपने आविर्भाव के साथ जिस युग सत्य के से साक्षात्कार किया था और जिसका एक संकेत भक्ति आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए हम दे चुके हैं, उस युग सत्य को देखकर कबीर जैसे निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति रो ही सकते थे। वे चाहते थे कि उनके इस रुदन में कोटि कोटि कंठों का रुदन भी शामिल हो, किंतु उनके रुदन में सुविधाभोगी वर्गों का कंठ स्वर शामिल नहीं हो सका। कबीर रोते रहे और अंततः सब कुछ स्वाहा करते हुए एक प्रचंड विद्रोही के रूप में सामने आ गए। कबीर के विद्रोही व्यक्तित्व का एक प्रधान कारण यह उनका यह अनंतकालीन जागरण और रुदन भी है। आधुनिक युग में आधुनिक नवजागरण के संदर्भ में भारतेंदु भी हमें रोते और देशवासियों से उस रुदन में सहयोग देने को कहते देख पड़ते हैं। आओ सब मिल कर रोवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जो व्यक्ति निरंतर जागने और रोने के लिए अवशप्त हो, इस प्रकार जाग कर और रो कर जो समाज धर्म और शासन के प्रभुओं की सुख की नींद हराम किए हो, समाज धर्म तथा शासन के मसीहा उसे क्यों और कैसे संरक्षण दे सकते थे, उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? कबीर प्रभु वर्ग के द्वारा तब से लेकर आज तक उपेक्षित क्यों रहे? उसका एक प्रधान कारण यह है, उनका जागरण और रुदन भी है। अपने साईं का दीदार पाकर कबीर गाहे बगाहे भले ही उमंग पड़ते हों, मस्त और बेपरवाह हो जाते हों, जगत का दीदार उन्हें बेहद उदास कर देता था। बाहर के फक्कड़पन और मस्ती की सात परतों के भीतर यह जो उदासी छिपी हुई है, ऊपर से दिखाई पड़ने वाली निपट कठोरता के भीतर यह जो करुणा का अजस्र सागर उनके अंतःकरण में लहरा रहा है, उसकी गहराइयों का अनुमान करके ही कबीर की ऊंचाइयों को मापा जा सकता है। कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व में विपरीतों की यह जो एकता है, विरुद्धों का यह जो सामंजस्य है, यही उनकी अद्वितीयता है। यही वे अपने समान धर्माओं से जुड़े रहकर भी उनसे अलग हैं, परंपरा के जीवित और जागृत अंश को लिए हुए भी उससे विद्रोही हैं, और यही उनके बड़प्पन का राज भी है। कबीर मात्र पहुंचे हुए संत और साधक ही नहीं थे, वे एक महान कर्मयोगी भी थे। मसीहाओं के अंदाज में उन्होंने जनता को केवल उपदेश ही नहीं दिए, केवल सिद्धांत ही नहीं बखारे, अपनी कही हुई एक एक बात को खुद अपने जीवन में आचरित भी किया। रूढ़ियों और रीतियों पर प्रहार करना तो सहज है, स्वयं अपने को उन पर धार की तरह चला देना सरल नहीं है। कबीर वाग्वीर नहीं, कर्मवीर थे। वे किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर लोगों को उद्बोधन नहीं कर रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चल भी रहे थे। कबीर मिसाल हैं तो इसलिए कि पहले उन्होंने अपना घर फूंका, फिर दूसरों से अपना घर फूंक कर अपने साथ चलने को कहा। कहते हैं कि काशी में प्राण छोड़ने से आत्मा सीधे बैकुंठ जाती है। काशी नगरी शंकर के त्रिशूल की नोक पर अवस्थित है। लोग बाग दूर दूर से मुक्ति की लालसा में महज प्राण छोड़ने काशी आते हैं। काशी की हिंदू धर्म मत में महिमा ही ऐसी है। इसके विपरीत मगहर है, जहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगले जन्म में निकृष्ट यौन प्राप्त करता है। कबीर जीवन भर काशी में रहे, किंतु जब प्राण छोड़ने का समय आया तो पंडितों और सारे शास्त्रों को मुंह बिराते हुए सीधे मगहर पहुंचे और मगहर में अपने प्राण छोड़े। कबीर मगहर के बारे में सब कुछ जानते हुए मगहर पहुंचे, अपनी कथनी और करनी को उन्होंने एक कर दिया। कबीर सच्चे सूरमा थे। वह सूरमा ही क्या जो निर्णय की घड़ी आने पर सोच विचार करे। कबीर ने अपने को ही दांव पर लगाया और मगहर जाते हुए वे लोगों को उस मर्म से भी परिचित करा गए जो जीवन भर की साधना के बाद उन्होंने पाया था, अर्थात जब राम के साथ सच्ची लव लगी हुई है, कहीं पर भी प्राण छूटे फर्क क्या पड़ता है। लोका तुम हो मत के भोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। क्या काशी क्या मगहर, ऊसर हृदय राम जो प्यारा। राम यह सर्वत्र व्याप्त है, घट घट में है, कीरी कुंजर में है, कण कण में है, तो फिर काशी और मगहर का फर्क कैसा। मरने के लिए काशी की भाग दौड़ क्यों। बहुत पहले उन्होंने पंडितों और मुल्लाओं से कुछ ऐसा ही सवाल किया था कि यदि भगवान मंदिर में रहता है और खुदा मस्जिद में, तो मंदिर मस्जिद जहाँ नहीं है वहाँ का ठाकुर कौन होता होगा, वहाँ किसकी ठकुराई चलती होगी। तुरक मसीत देहुरे हिंदू दूठा राम खुदाई, जहाँ मसीत देहुरा नाही तहाँ काठी तहाँ काकी ठकुराई। वस्तुतः कबीर राम नाम के बीज मंत्र को जीवन में उतार चुके थे, गो कि उनकी साधना बहुत कठोर थी, किंतु सारी अग्नि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हुए वे अपने राम का दीदार हासिल कर चुके थे। आंख से निकले आंसुओं से नहीं, आंख से टपके लहू से अपने प्रियतम के चरण धो चुके थे। सोई आंसू साजड़ा, सोई लोक बिड़ाए, जे लोइड लोही चुए तो जानो हेत ही आए। गालिब के द्वारा लिखी यह पंक्ति बहुत मशहूर है, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। कबीर की उपर्युक्त उक्ति से उसका मिलान कीजिए। जब पात लहू के आंसुओं तक पहुंच चुकी हो, जब इस बिंदु पर प्रियतम के साथ एकात्म हो चुका हो, तब फिर स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष का महत्व ही क्या रह जाता है। कबीर के लिए जीवन और मृत्यु एक बन चुकी थी, वे दोनों के प्रति सम थे। वे तो ऐसे सूरमा थे कि जो जब जीता है तो मौत को एक जेब में रखे हुए और जब मरता है तो जिंदगी जिसके कदम चूमती है। एक शमशेर इकसार बजती रहे, खेल कोई सूरमा संत झेले, सील से नेह करी ज्ञान को खंगले, आए चौगान में खेल खेले। कबीर का चिंतन उनकी कविता अथवा उनकी साधना की इतनी विराट आयामों वाली है कि वह आत्मबोध और जगत बोध जैसे विभाजनों को स्वीकार नहीं करती। उनके यहाँ दोनों ही एकाकार हैं। उनकी भक्ति वस्तुतः योग साधना परक भक्ति नहीं है, जैसा कि प्रायः उसे समझा जाता है। वह ठेठ जीवन के बीच से रास्ता बनाती है। कबीर संसार के वैराग्य का प्रतिपादन नहीं करते, वे केवल राम नाम के मर्म को पहचानने पर बल देते हैं। उनकी शर्त जरूर कठिन है, खाने की धार पर चलने के समान, और उस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जो जाति वर्ग धर्म तथा वर्णगत संस्कारों के रूप में सदियों से मनुष्य की चेतना में परत दर परत जमता चला जा रहा है। कबीर जब लोगों से अपना घर फूंकने की बात कहते हैं या शीश को उतार कर जमीन पर रखने की बात करते हैं, तो उनका आशय इस सब को छोड़ देने से ही है। एक वाक्य में कहना चाहें तो अहंकार से मुक्त होने से है। जिस युग में कबीर जन्मे थे और जिन परिस्थितियों में उन्हें जीना पड़ा था, उसके आधार पर सहज ही अनुभव किया जा सकता है कि वे जो कुछ कह सके और कर सके, उसे कितने साहस और दीवट के साथ उन्हें कहना पड़ा होगा। सचमुच जान की बाजी लगाकर सिंधोरा हाथ में लेकर मैदान में उतर पड़ने वाला सूरमा ही वह सब कुछ कर सकता है। हम आज एक मानव धर्म और एक मानव संस्कृति की बात करते हैं और हम में से कितने वस्तुतः आज भी ऐसा कह पाते हैं। कबीर यह 500 साल पहले कह सके और कह ही नहीं सके, अपने आचरण में उसे उतार भी सके। उनके पास इतना आत्मविश्वास था कि वे साहस के साथ यह भी कह सके कि उनका रास्ता ही एकमात्र रास्ता है और बाकी सारे रास्ते गुमराह करने वाले हैं। इसे भले ही उनकी गर्वोक्ति समझा जाए, उनका अहंकार माना जाए, किंतु जैसा कि उनका जीवन, उनका आचरण और उनकी करनी थी, उनका यह कहना कि जिस चादर को बड़े बड़े सुर नर और मुनियों ने ओढ़ ओढ़ कर मैला कर दिया, उसे वे बेदाग बनाए रख सकने में सफल हुए, 100% सही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि कबीर में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था, अतएव उनके गर्वोक्ति करने का सवाल ही नहीं उठता। आत्मविश्वास से पूरी सात्विक अंतःकरण से फूटे सत्य कथन का स्वाभाविक तेज यदि किसी को गर्वोक्ति या अहंकार लगे तो यह अलग बात है, अन्यथा यदि कबीर की चादर बेदाग न होती, न तो वे पंडितों की नगरी काशी में इतने आत्मसम्मान से रह सकते थे और न उन्हें चुनौती दे सकते थे। जो लंबा आयुष्य उन्होंने भोगा वह भी उनके शरीर और मन रूपी चादर के बेदाग रहने का ही परिणाम है। आत्मसम्मान के साथ उन्होंने एक लंबा और तेजस्वी जीवन जिया। बड़ी से बड़ी सांसारिक सत्ता के समक्ष भी वे घिघियाए नहीं, दीन नहीं हुए, नत नहीं हुए। अपनी रोजी रोटी उन्होंने खुद अर्जित की और उससे अधिक अर्जित नहीं किया जितने की उन्हें आवश्यकता थी। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए। जुलाहे का अपना पेशा उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। किसी भी प्रकार की हीन भावना से रहित डंके की चोट पर अपने को जुलाहा तथा कोरी कहा। कहे कबीर जुलाहा, कहे कबीरा कोरी। न तो भक्तों की भीड़ उन्हें भरमा सकी और न साधना का संतत्व का भाव उन्हें अपने सहज मानवीय क्रियाकलापों से परांगमुख कर सका। कबीर की यह वह मनुष्यता है जो उनके संतत्व के शीर्ष पर चढ़कर बोलती है, बेदाग और निष्कलुष जीवन आखिर कहते किसे हैं। जब तक कबीर की प्रतिभा को ध्वंसात्मक भी कहा गया है, हम इस भ्रांति का निराकरण कर चुके हैं कि कबीर को समग्रता में देखकर ही पहचाना जा सकता है। कबीर कतई केवल ध्वंस के आग्रही न थे, वे मूलतः और वस्तुतः एक नए निर्माण के आकांक्षी थे। यह बात और है कि अपनी परिकल्पना की इमारत के लिए जो नींव वे डालना चाहते थे, उसके लिए उन्हें गहराई तक जाकर समाज की जड़ों पर कुदाल चलाने पड़े। इसे यदि ध्वंस कहा जाए तो पूछा जा सकता है कि आखिर निर्माण किसे कहते हैं। इस बिंदु पर आकर हम उस परंपरा पर भी एक निगाह डाल लेना चाहते हैं जिसका प्रवर्तन कबीर से होता है, तथा उन कारणों पर भी विचार करना चाहते हैं जिनके रहते विद्रोह का पथ अपनाने वाली निर्गुण भक्त की यह परंपरा कालांतर में क्षीण पड़ते हुए समझौते का रास्ता अपनाने वाली सगुण भक्त की धारा के समक्ष दब गई या दबा दी गई। कबीर के परंपरा में यूं तो अनेक नाम है, किन्तु रैदास, नानक, दादू विशेष प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में अनेक कारणों से सगुण निर्गुण में भेद नहीं रहा, अन्यथा दर्जी कुल में जन्मे नामदेव कबीर के ही समान धर्मा हैं। कबीर के निर्गुण पंथ पर लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत आवश्यक कार्य हुआ। उनके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। पंथ चल निकला जिनमें नानक, दादू, मलूकदास आदि अनेक संत हुए। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 67। कबीर के कार्य पर यह आचार्य शुक्ल की महत्वपूर्ण टिप्पणी है, किंतु अन्यत्र कबीर पर अपना मत देते हुए शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाए हैं। यह सर्वविदित है कि कबीर के निर्गुण मत का आगे चलकर जोरदार खंडन हुआ। कृष्ण भक्त सगुण कवियों ने तो भ्रमर गीतों के द्वारा यह कार्य किया किंतु राम भक्त सगुण कवियों ने सीधे ही निर्गुण मत पर चोट की। आचार्य शुक्ल का सगुण भक्ति विशेषकर सगुण राम भक्ति पर अनुराग जग जाहिर है। अतएव जहाँ उन्होंने कबीर की सराहना इस कारण की है कि उन्होंने नाथपंथियों के अहेतुक प्रभाव से साधारण जन को मुक्त करते हुए उसे भक्ति रस की ओर मोड़ा, वहाँ कबीर की निर्गुण भक्ति के पतवे इस कारण उदार और वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाए हैं कि वह उस सगुण राम भक्ति के सीधे विरोध में सामने आती है, जिसमें राम को दशरथ सुक्त मानकर उनके अवतारी रूप का आख्यान किया गया है। कबीर जाहिर है कि राम के इस रूप के कायल नहीं थे, उनका राम तो कोई दूसरा ही मर्म रखने वाला था। उन्होंने कहा भी है कि दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। यही कारण है कि कबीर के बारे में लिखते हुए आचार्य शुक्ल ने कुछ इस प्रकार का आशय व्यक्त किया है कि क्योंकि वे पढ़े लिखे तो थे नहीं, अतएव इधर उधर से सुन सुन कर जो कुछ उन्होंने अपनी अटपटी वाणी में कहा, साधारण जन उससे जरूर प्रभावित हुआ। उनका आशय कुछ इस प्रकार का भी है कि साधारण जन भी कबीर की वाणी से प्रभावित कम हुए, आतंकित अधिक हुए। वे लिखते हैं, अनेक प्रकार के रूप को अन्योक्तियों के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपर लोगों को चकित किया करती थी। और भी उनका कहना है, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए लंबी चौड़ी गरोक्तियां भी कभी कभी कहा करते थे। वही पृष्ठ 67। कबीर की तथा कथित गरोक्तियों के बारे में हम कह चुके हैं। सवाल ब्रह्म के साक्षात्कार का है। हमारे अनुसार यह बहस भी बहुत तात्विक नहीं होगी कि ब्रह्म का साक्षात्कार वस्तुतः किसे हुआ और किसे नहीं। सवाल ब्रह्म के साक्षात्कार का न होकर कबीर के बारे में रिकॉर्ड को ठीक रखने का है। आचार्य शुक्ल की कबीर पर की गई टिप्पणियां अनेक सवाल उठाती हैं। यदि नाथपंथी सामान्य जनता को अपने कारनामों से चकित और आतंकित कर रहे थे तो क्या कबीर ने भी वही रास्ता चुना? फिर कबीर को नाथपंथियों के प्रभाव से साधारण जनता को मुक्त करने का श्रेय क्यों दिया जाए? दूसरा सवाल है कि क्या कबीर की लपेट में साधारण जनता महज आतंकित और चकित होकर ही आई और उनकी वाणी में उनके अपने गहरे अनुभवों का कोई भी ताप नहीं था? क्या उसमें उस मनुष्य सत्य का तेज नहीं था जिसके बूते पर ही आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर साधारण जन में आत्मसम्मान की भावना भरने में समर्थ हुए? क्या कबीर की वाणी आत्म सत्य तथा युग सत्य दोनों से दीप्त नहीं थी? क्या पढ़े लिखे समाज के मानस को कबीर की अनुभव सिद्ध वाणी ने नहीं झकझोरा? क्या कबीर में केवल वाग वैदग्ध्य ही था? ये वे प्रश्न है जो इसलिए विचारणीय है कि ये एक मर्मज्ञ और सच्चे आचार्य की टिप्पणियों से उद्भूत हुए हैं। कबीर ने सचमुच कुछ चमत्कारिक उक्तियां कही हैं, कुछ आतंक भी जमाना चाहा है, पर उसका लक्ष्य साधारण जन नहीं, जैसा कि आचार्य शुक्ल का विचार है। उसका लक्ष्य है वह पढ़ा लिखा समाज, जो पढ़ा लिखा होकर भी कबीर जैसी प्रतिभा वाले अनपढ़ के लिए ज्ञान शून्य था, वस्तुतः अनपढ़ था। कबीर ने आतंकित किया है, आतंक जमाया है उस तथा कथित पढ़े लिखे समाज पर। पोथी ज्ञान के से भरा क्रांत उस पंडित और शास्त्रज्ञ वर्ग पर, अहंकारी तथा अहमानी उन कट्टरपंथियों पर जो साधारण जन पर अपने खोखले विधि विधानों, अपने अमानवीय कानून कायदों तथा अपने शास्त्रीय पांडित्य के बल पर दुगुना आतंक जमाए हुए था, जिसने साधारण जन के जीवन को नारकीय बना रखा था और जिसकी तस्दीक आचार्य शुक्ल ने यह कहकर की है कि कबीर ने मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता के मन में आत्मगौरव का भाव जगाया। अतएव कबीर के चमत्कार और आतंक का लक्ष्य साधारण जन न होकर कट्टरपंथी पंडित और शास्त्रज्ञ हैं। अनपढ़ व्यक्ति जैसे कि कबीर थे और जिसका कोई मतलब उन्हें नहीं था, आखिर किस आधार पर शास्त्रज्ञों से लोहा लेता? उन्हें ही निरुत्तर करने के लिए कबीर ने उलटवासियां कही। शास्त्र ज्ञान के वजन पर उन्होंने अनुभव को रखा। कागज की लेखी की काट आखिन की देखी से की और पांडित्य जन सारे अहंकार को प्रेम के ढाई अक्षरों पर तोल दिया। उन्होंने अपने आचरण, अपनी साधना, अपनी भक्ति और सबसे आगे बढ़कर अपनी मनुष्यता से यह सिद्ध कर दिया कि संत वह नहीं है जो ज्ञान के बोझ से दबा हुआ है, संत वह है जो पहले एक ईमानदार इंसान है, बाद में और कुछ। कबीर पर कोई भी बुनियादी निर्णय लेते समय हमें इन बातों को मद्देनजर रखना होगा। कबीर के निर्गुण पंथ में नानक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कबीर की भांत ना हिंदू ना मुसलमान की जमीन पर खड़े होकर सत्य तत्व का प्रचार किया। नानक गो की उच्च कुल से आए थे, फिर भी उन्होंने वर्ण वर्ग जाति धर्म तथा संप्रदाय की संकुचित धारणाओं पर कड़ी चोट की और इस प्रकार कबीर की उस बेल को सींचा जो उन्होंने बड़ी कठिनाई से नाना रूपों में विभाजित मनुष्य समाज के बीच रोपी थी। महाराष्ट्र में नामदेव ने मनुष्यता की इसी सामान्य भूमि को स्वीकार कर अपनी बातें कही और इसी परंपरा में रैदास चमार भी सामने आए। चित्तौड़ की उच्च कुल की राजरानी मीरा ने कहते हैं रैदास को अपने गुरु रूप में स्वीकारा। नामदेव, कबीर, नानक, रैदास, दादो, मलूकदास, मीरा की भक्ति की यह वह धारा है जो एक ही परम तत्व को सामने रख अपने समय में समाज में आदमीयत की तलाश करती है। चंडीदास का मानुष सत्य इन संतों की वाणी में अपनी सारी प्रखरता के साथ गूंजा है। कबीर और निर्गुण धारा की संत परंपरा की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने मनुष्य और मनुष्य के बीच फर्क करने वाली बड़ी से बड़ी शक्ति का विरोध किया। उसने एक ऐसी मानव संस्कृति की परिकल्पना हमारे सामने रखी जो आज भी भले ही हमारे लिए काम में बनी हुई हो किंतु जिसकी ओर बढ़ता हुआ मनुष्य का एक एक चरण ऐसी हजार यात्राओं से बढ़कर है जो कुछ मनुष्यों के द्वारा कोट कोट मनुष्यों के कुचलते हुए अपनी शक्ति तथा वैभव का विस्तार करने के लिए की जाती रही है। एक मानव धर्म, एक मानव समाज तथा एक मानव संस्कृति का सपना ही इन क्रांत दृष्टा संतों की विरासत है जो आगामी पीढ़ियों के लिए बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सुलभ की है। क्रांत दृष्टा कबीर का सपना जरूर अभी साकार नहीं हुआ पर वह मृत भी नहीं हुआ है। इतिहास के चरण जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि आगामी शताब्दी कबीर की शताब्दी होगी और तब कबीर समाज तथा शासन के महाप्रभुओं के श्राप से मुक्त होंगे और तब उस नए मानव के तथा उस नई मानव संस्कृत के शिल्पियों के संरक्षण में जिसका सपना वसीयत के रूप में कबीर ने उन्हें दिया है कबीर की शताब्दी आयोजित होगी। कबीर तभी अपने सारे निहितार्थ के साथ अपनी समूची वास्तविकता में अपनी समग्रता में पहचाने जाएंगे। अभी मंजिल दूर है किंतु कबीर की संतत के चरण उस ओर बढ़ रहे हैं। पाई हुई वसीयत को सहेजे वह बड़ी आस्था के साथ अपने अभियान पर है।